पृष्ठ संख्या 56। मानव शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत अगला शीर्षक है बिंदुदः जादू सिद्धांत। मानव शास्त्रियों द्वारा जादू एवं धर्म के संबंध पर पर्याप्त विचार किया गया है, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जादू द्वारा ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ हुआ कि जादू धर्म के पहले है। इसके विपरीत कुछ सिद्धांतों का मत है कि जादू धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। धर्म से ही जादू का विकास हुआ है। यहाँ प्रश्न उठता है कि वे कौन-कौन से प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम यह निश्चित कर सकते हैं कि काल क्रमानुसार कौन पहले आता है। अथवा यह प्रश्न भी उठता है कि क्या धर्म और जादू की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई है या एक दूसरे की उत्पत्ति का कारण है। इन प्रश्नों के संदर्भ में हम निम्नलिखित रूपों से विचार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 57। अगला शीर्षक है बिंदु अ धर्म जादू के पहले था। विचारकों का यह मत है कि जादू धर्म का विकृत रूप है। धर्म से ही जादू का विकास हुआ होगा, परंतु यह कथन तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि धर्म और जादू प्रारंभ में एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं कि उनको अलग करना और उनके बीच कोई विभाजक रेखा खींचना कठिन था। दोनों कई अर्थों में एक समान प्रतीत होते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से तो दोनों मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात दोनों एक रहस्यमयी शक्ति में विश्वास करते हैं और उस शक्ति द्वारा जीवन के क्षेत्र में काम लेने के लिए उसकी पूजा, प्रार्थना, मंत्र आदि का प्रयोग करते हैं। धर्म में शक्ति को वश में करने के लिए पूजा, आराधना और प्रार्थना का सहारा लिया जाता है और धर्म में तंत्र मंत्र आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में क्रियाएं इतनी घुली मिली एक साथ होती थीं कि धर्म और जादू एक दूसरे से अलग नहीं प्रतीत होते। संभवतः इसी आधार पर लोगों में यह भ्रम हो गया कि दोनों का स्वतंत्र विकास हुआ और धर्म से ही जादू का विकास हुआ है, या धर्म का विकृत रूप ही जादू है। परंतु गैलवे महोदय के अनुसार वस्तु स्थिति यही कही जा सकती है कि आदिम धर्म के साथ जादू इतना मिला जुला था कि धर्म के विकृत या अधः पतन की बात ही नहीं की जा सकती। अगला शीर्षक है बिंदु ब जादू से धर्म का विकास हुआ। दूसरा दृष्टिकोण यह मिलता है कि जादू धर्म से पहले था। जादू को धर्म का विकृत रूप नहीं कहा जा सकता। इस मत के प्रमुख समर्थक डॉक्टर जे जी फ्रेजर हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक गोल्डन बाउ में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि धर्म जादू की असफलता का परिणाम है। जादू से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। फ्रेजर का यह सिद्धांत कई कारणों से मान्य नहीं है। पहला, यदि धर्म का विकास जादू की असफलता के कारण ही हुआ है तो आधुनिक युग में अब भी विश्व के धर्मों में जादू क्यों पाया जाता है? यदि धर्म से ही जादू की उत्पत्ति हुई होती तो दोनों में सामंजस्य कैसे पाया जाता? दूसरा है, उन स्थानों में धर्म कहाँ से आया जहाँ जादू का अभाव पाया जाता है? तीसरा, फ्रेजर धर्म की उत्पत्ति का केवल नकारात्मक कारण प्रस्तुत करते हैं। धर्म की उत्पत्ति जादू की असफलता के कारण हुई, केवल इतना कहने से उत्पत्ति संबंधी व्याख्या पूर्ण नहीं होती। जादू धर्म के प्रेरक शक्ति की व्याख्या नहीं कर सकता, अर्थात धर्म के मनोवैज्ञानिक स्वरूप की व्याख्या जादू द्वारा नहीं की जा सकती। अगला शीर्षक है, बिंदु स, धर्म और जादू की आधार भूमि एक ही है। उपरोक्त दोनों मतों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि धर्म का कारण न तो जादू है और न ही जादू का कारण धर्म। ऐसा माना जा सकता है कि धर्म और जादू की जड़ मानव अनुभूति में व्याप्त रहस्यात्मक शक्ति ही है। विश्व की इस रहस्यात्मक शक्ति का उपयोग धर्म और जादू दोनों अपनी अपनी विधियों से करते हैं। आदिम रूप में तो दोनों में अंतर नहीं प्रतीत होता, परंतु विकास क्रम में अंतर किया जाने लगता है और अंत में दोनों अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। दोनों की आधार भूमि एक ही है, इसलिए इनमें समानता का पाया जाना अस्वाभाविक नहीं है। अगला शीर्षक है, समानता। क्रियाविधि, कर्मकांड, संस्कार एवं उद्देश्य की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त समानता है। इन दोनों का ही उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। पृष्ठ संख्या 58। दोनों रहस्यात्मक शक्ति से मानव का संबंध स्थापित कराते हैं, बोध प्राप्त कराते हैं। दोनों ही आदिम हैं। दोनों में शक्ति की पूजा की जाती है और उस समय ऐसे संस्कारों का पालन किया जाता है कि उनको अलग करना कठिन हो जाता है। कौन संस्कार धर्म का है और कौन संस्कार जादू का है, यह निश्चित नहीं हो पाता। बलि की प्रथा धर्म और जादू दोनों में देखी जा सकती हैं। पूजा और क्रिया विधान में भी पर्याप्त समानता पाई जाती है। धूप, दीप, अर्चना दोनों में देखी जा सकती है। मनोवांछा की पूर्ति के लिए दोनों में क्रियाएं की जाती हैं। अगला शीर्षक है, असमानता। इन समानताओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों में एक को दूसरे का विकास क्रम में कारण माना जा सकता है। फ्रेजर का यह सिद्धांत भी नहीं मान्य हो सकता कि जादू से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि पहला, धर्म में निर्भरता की भावना पाई जाती है। दूसरा है, धार्मिक व्यक्ति शक्ति के ऊपर आश्रित रहता है, जबकि जादू में नियंत्रण की भावना रहती है। तीसरा है, जादू के द्वारा शक्ति को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। धर्म में शक्ति में विश्वास प्रकट किया जाता है और जादू में शक्ति के प्रति अधिकार और आत्म प्रकाशन की मनोवृत्ति देखी जाती है। चौथा है धर्म में विनम्रता, आत्मनिवेदन, श्रद्धा और भक्ति पाई जाती है, जबकि जादू में हठ और अहंकार दृष्टिगत होता है। पांचवा है विधि की दृष्टि से भी अंतर है। धर्म में पूजा और प्रार्थना की पद्धति अपनाई जाती है और जादू में मंत्र तंत्र आदि की क्रियाविधि होती है। छठवां है धर्म में परार्थ और लोक कल्याण की भावना देखी जाती है और जादू में स्वार्थ की भावना मूल रूप में होती है। सातवां है धर्म में सामाजिकता और नैतिकता की प्रधानता होती है और जादू में असामाजिकता और अनैतिकता का प्रवेश देखा जाता है। जादू का प्रयोग करके व्यक्ति स्वार्थवश अनैतिक कार्य करने में पीछे नहीं रह सकता। बिंदु आठवां है धर्म में शक्ति की प्राप्ति ही मूल लक्ष्य है, परंतु जादू में चमत्कार, ऐश्वर्य और सिद्धियां ही अधिकांश रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। अब अगला शीर्षक है निष्कर्ष। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि धर्म न तो जादू से उत्पन्न हुआ है और जादू न तो धर्म से ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि दोनों के सिद्धांत और विधियां एक दूसरे से भिन्न हैं। एक दूसरे से उत्पत्ति की संभावना इसीलिए हुई कि आदिम काल में दोनों एक दूसरे से घुले मिले थे और दोनों की आधार भूमि एक ही थी। अब अगला शीर्षक है, बिंदु यह है माना सिद्धांत या पूर्वजीववादी सिद्धांत। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार माना नामक रहस्यमयी शक्ति को आराधना और उपासना का विषय माना जाता है। इस सिद्धांत के विषय में आधुनिक मानव शास्त्रीय गवेषणाओं से पता चलता है कि जीववादी सिद्धांत के पूर्व ही आदिम मानव एक अद्भुत रहस्यमयी तथा व्यक्तित्व विहीन शक्ति में विश्वास रखता था तथा उसके प्रति विस्मय और श्रद्धायुक्त भय से अभिभूत था। इसीलिए इस सिद्धांत को पूर्वजीववादी सिद्धांत भी कहते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि प्रारंभ में जीववादी सिद्धांत के अनुसार मानव शक्ति पूजा तथा सर्वात्मवाद में विश्वास रखता था, परंतु इसके पहले माना की धारणा का ही प्रचलन कहा जा सकता है। मानववाद जीववाद से प्राचीन कहा जा सकता है। डॉक्टर मरेट के अनुसार तो माना सिद्धांत से ही विकास क्रम में जीववादी सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। अतः धर्म की उत्पत्ति का कारण माना सिद्धांत या पूर्वजीववादी सिद्धांत ही कहा जाता है। अगला शीर्षक है माना की उत्पत्ति और अर्थ। प्रारंभ में मानव रहस्यमय प्राण शक्ति में विश्वास रखता था। पृष्ठ संख्या 59। इस शक्ति को आत्मा तो नहीं कहता था, परंतु उस अद्भुत शक्ति के कई भाषाओं में विभिन्न नाम मिलते हैं। इसी को मलेनेशियन शब्द माना से अभिहित किया जाता है। यह शक्ति अन्य भाषाओं में ओरेंडा, या वकंडा आदि नामों से कही जाती है। कोरिंगटन ने माना की परिभाषा इस प्रकार दी है, यह एक प्रकार की अति प्राकृतिक शक्ति है। इसे भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं कहा जा सकता। इसका प्रकटीकरण किसी भौतिक अथवा मानवीय शक्ति में होता है। इस परिभाषा से माना का अर्थ स्पष्ट होता है कि यह एक विलक्षण अलौकिक तथा व्यक्तित्व शून्य शक्ति है, जो विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं तथा जीवों में पाई जाती थी और जिसके प्रति आदिम मानव में श्रद्धायुक्त भय का संचार होता था तथा जिसे वह धार्मिक कृत्यों द्वारा पूजा करता था। माना के स्वरूप का स्पष्टीकरण इसकी विशेषताओं से भी किया जा सकता है। अगला शीर्षक है माना की विशेषताएं। बिंदु पहला है, माना सर्वव्यापी, अद्भुत और अतींद्रिय शक्ति है और भौतिक वस्तुओं के माध्यम से प्रकट होती है। दूसरा है, यह रहस्यमयी अलौकिक शक्ति भौतिक न होकर मानसिक या आध्यात्मिक है। तीसरा है, यह शक्ति यद्यपि सभी वस्तुओं में व्याप्त होती है परंतु कुछ पदार्थों में विशेष रूप से निहित रहती है। चौथा है, यह शक्ति शुभाशुभ सभी कार्यों में कार्य करती है। इसका उपयोग शत्रुओं को हानि पहुंचाने और मित्रों के कल्याण के लिए किया जा सकता है। पांचवा है, माना में गतिशीलता भी है क्योंकि इसे एक शक्ति माना गया है। जैसे बिजली एक शक्ति है और इसका संचार होता है, वैसे ही माना का संचार एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो सकता है। छठवां है, माना में संवेगों का भी स्थान है। इसमें आश्चर्य, श्रद्धायुक्त भय और अस्तब्धता आदि का स्पष्ट संकेत मिलता है। अगला शीर्षक है, आदिम काल में माना का प्रयोग। आदिम मानव इस माना नामक शक्ति का विभिन्न कार्यों में प्रयोग करता था। सफलता और असफलता में इसी शक्ति का प्रभाव मानता था। उसका विश्वास था कि सफल व्यक्ति को माना की शक्ति प्राप्त रहती है। किसी व्यक्ति के साथ यह शक्ति ताबीज, जड़ी बूटी, पत्थर या धातु के रूप में रह सकती है। टोटम पशु में यही माना नामक शक्ति ही रहती है, इसीलिए वह पवित्र होता है। यदि कोई राजा युद्ध में ताबीज बांधकर जाता और विजयी होता तो इसका श्रेय राजा के युद्ध कौशल और सैन्य शक्ति को न देकर माना को ही दिया जाता था। इसी प्रकार आदिम मानव फल फूल या अपने पशुओं की वृद्धि में और पेड़ पौधों के विकास में माना के ही प्रभुत्व को स्वीकार करता था। यहाँ तक कि नदी में नौका की गति में वेग का होना तथा पर्याप्त मात्रा में मछलियों का पकड़ना माना के कारण ही संभव था। माना का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने, रोगों से छुटकारा पाने और शकुन जानने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट वस्तुओं तथा मनुष्यों द्वारा ही होता था, जिसके माध्यम से इसको काम में लाया जाता था। वह विशिष्ट समझा जाता और उसके प्रति लोगों की श्रद्धा होती थी। वह वस्तु या व्यक्ति आराधना के योग्य कहा जाता था। इस श्रेणी में राजा, पादरी और चिकित्सक आते थे। पृष्ठ संख्या 60। शीर्षक है माना के भावात्मक और निषेधात्मक दो पक्ष। माना आदिम धर्म का भावात्मक पक्ष है और इसका निषेधात्मक पक्ष टैबू कहलाता है। माना के आधार पर ही टैबू की उत्पत्ति हुई है। माना रहस्यमयी, अलौकिक तथा विलक्षण शक्ति मानी जाती थी। इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना पड़ता था, इसलिए इसके प्रयोग के लिए आदिम मानव ने कुछ निषेधों का प्रचलन किया था। उसी निषेध को टैबू की संज्ञा दी गई है। टैबू के कारण ही आदिम मानव ने व्यक्ति को बहुत सी वस्तुओं से अलग रखने का विधान किया है। ऐसी वस्तुएं अछूत के रूप में मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए शव, नवजात शिशु, पुजारी, राजा, वेदी और मुखिया टैबू माने जाते हैं। इनके स्पर्श का निषेध किया गया है। आदि मानव का विश्वास था कि इनके स्पर्श से व्यक्ति को विपत्तिजनक घटनाओं का सामना करना पड़ता है, अतः टैबू को सभी आपत्तिजनक घटनाओं और अनिष्टों से बचने का उपाय कह सकते हैं। फ्रायड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टोटम एंड टैबू में टैबू के विषय में विस्तृत व्याख्या दी है। फ्रायड के गंभीर और विस्तृत अन्वेषण से टैबू के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनका प्रचलन अब भी मानव समाज में दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ, नवजात शिशु और उसकी माता को अलग सूतिका गृह में रखा जाता है। इनको स्पर्श करने वाला शिशु और माता के समान ही अछूत माना जाता है। स्पष्ट है कि सब प्रकार की आशंकाओं से सुरक्षा के लिए ही इस टैबू का प्रचलन किया गया है। टैबू के प्रचलन का दूसरा आधार यह बताया जाता है कि आदिम मानव जिन वस्तुओं को सबसे पवित्र और शक्तिशाली समझता था, उसके स्पर्श का निषेध टैबू करता था। इसका उदाहरण यहूदियों के धर्म ग्रंथ में मिलता है। यहोवा का निवास स्थान मानकर साइनाय पर्वत को पवित्र समझा जाता था और मनुष्य तथा पशुओं को इसके पास जाने का निषेध टैबू कर दिया गया था। इसी प्रकार सम्राटों तथा मुखिया को लोग पवित्र मानते थे। उनका संपर्क शारीरिक शुद्धि के पश्चात पुजारियों के माध्यम से ही संभव था। बलि तथा पूजा में भी पवित्रता का ध्यान रखा जाता था और टैबू द्वारा ही उनकी पवित्रता कायम रखी जाती थी। इस प्रकार के उदाहरण विभिन्न देशों में मिलते हैं। वेदों में देवताओं के मंत्रोच्चारण की विधि पर ध्यान देने की बात मिलती है, अन्यथा देवता के रुष्ट होने की संभावना होती है। शव के संबंध में टैबू की व्याख्या पाई जाती है। शव तथा उसको स्पर्श करने वाले को भी अस्पृश्य समझा जाता है। शुद्ध कर्म के पश्चात ही शव की अंतिम क्रिया करने वाले को समाज में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। इतना तो निश्चित है कि राजा, पुजारी, मुखिया और योद्धाओं को अस्पृश्य इसलिए माना जाता था कि उनमें माना नामक शक्ति रहती है। स्पर्श से उनकी माना शक्ति नहीं रह जाएगी। इससे ही सिद्ध होता है कि टैबू माना का निषेधात्मक पक्ष है। टैबू द्वारा निर्बलों, असहायों तथा स्त्रियों को त्राण मिलता है। जन्म, मृत्यु तथा विवाह आदि कार्यों के नियमों का परिपालन टैबू के द्वारा ही होता था। कहा जाता है कि लुप्त हुई वस्तु को खोज निकालना टैबू का ही कार्य था। हमने देखा है कि जिस प्रकार टोटम आदिम मानव की धर्म व्यवस्था होते हुए भी समाज व्यवस्था है, उसी प्रकार टैबू को प्रारंभिक नीति कहा जा सकता है। वैसे टैबू किसी सामान्य नियम के अंतर्गत नहीं आते, फिर भी इसे प्रारंभिक नीति इसलिए कहा जा सकता है कि आदिम मानव के नैतिक नियम प्रायः निषेध के रूप में ही होते थे। पृष्ठ संख्या 61। माना सिद्धांत के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि आदिम मानव में धर्म की उत्पत्ति एक अलौकिक, रहस्यमयी तथा अवर्णनीय शक्ति में विश्वास, उसके प्रति श्रद्धा, रहस्यमयता और विस्मयानुभूति के कारण हुई है। मानव अपने जीवन संचालन के लिए पराशक्ति में विश्वास रखता था। यदि हम यह भी न माने कि माना के कारण ही धर्म की उत्पत्ति हुई है, तो इतना तो मानना ही पड़ता है कि माना की धारणा से आदिम मानव की मानसिक अवस्था का परिचय मिलता है। आदिम मानव के मन में माना शक्ति का प्रवेश क्यों और कैसे हुआ? वह कौन कौन से तत्व हैं जो उसे धार्मिक बनाने में सहायक हुए? उसके आभ्यांतरिक जीवन में पराशक्ति में विश्वास की धारणा के प्रवेश के कौन कौन से आधार हैं? धर्म की उत्पत्ति की समस्या का पूर्ण विवेचन तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि इन प्रश्नों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं होगी।